ओम शांति। 7 जनवरी, आज का पुरुषार्थ, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए देह, संबंध व पदार्थ का कोई भी लगाव नीचे न लाए। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए देह, संबंध व पदार्थ का कोई भी लगाव नीचे न लाए। जो वायदा है, कौन सा वायदा? धन मन धन सब तेरा, तो लगाव कैसे हो सकता है? फरिश्ता बनने के लिए यह प्रैक्टिकल अभ्यास करो कि क्या अभ्यास करो? यह सब सेवार्थ है, अमानत है। अमानत अर्थात अमानत अर्थात दूसरे की चीज जो दी है, अमानत अर्थात जो संभालने के लिए रखी गई चीज है। मैं ट्रस्टी हूं, तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? लगाव नहीं, किसमें? देह में, संबंध में और पदार्थ। तो ये 3 चीजें, बॉडी, देह, संबंध, रिलेशनशिप और पदार्थ, वस्तु, ऑब्जेक्ट। और यहां है हम, देह अपनी तरफ खींचता है, संबंध अपनी तरफ खींचते हैं और पदार्थ अपनी तरफ खींचते हैं। सब कहते हैं मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो। वायदा है तन मन धन तेरा, तो लगाव कैसे हो सकता है? फरिश्ता बनने के लिए प्रैक्टिकल अभ्यास करो, क्या अभ्यास करो? ये सब किस लिए है? सेवा अर्थ है। एक राजा इतना ज्यादा दुखी था क्योंकि उसकी रुचि अध्यात्म में ज्यादा थी, कारोबार, राजपाट, लोगों की समस्याएं, राज्य का कारोबार, ये सब से मन उचट विरक्त हो गया था। बार बार उसको ध्यान, तपस्या, वैराग, ये सब खींचता था। ये सब कुछ व्यर्थ लगता था, यहां का कारोबार, यहां के लोग, यहां की बातें, यहां की समस्याएं, और सोचता था ये सब छोड़कर किसी एकांत में, किसी जंगल में जाकर तपस्या करूं और जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे प्राप्त करूं, क्योंकि जीवन के सारे सुख भोग कर देख लिए, आत्मा खाली ही रही, न धन सुख दे पाया, न काम सुख दे पाया, न मित्र, न संबंधी, न पद, न ख्याति, जो कुछ व्यक्ति को चाहिए था वो सब उसने पाया, पर किसी चीज ने उसको सुखी नहीं बनाया। सारे सुख उपभोग करके देख लिए और सब कुछ व्यर्थ ही नजर आया। आखिर वो अपने राजगुरु के पास जाता है और कहता है मैं क्या करूं, मेरा बच्चा भी इतना छोटा है कि मैं ये चला जाऊं तो ये किसको सौंप कर जाऊं, कोई योग्य व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो गुरु कहता है क्या मेरे से योग्य और कोई दूसरा हो सकता है? तुम एक काम करो, सब कुछ मुझे दे दो, मैं राजा बन जाता हूं और तुम जाओ यहां से। वो कहता है हां ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, आपसे भला योग्य और कौन हो सकता है दूसरा, ये जिम्मेदारी आप संभाल लो। तो गुरु पूछता है तुम क्या करोगे? वो कहता है मैं खजाने से थोड़े पैसे ले लूंगा, धन ले लूंगा, और फिर यहां से दूर जाकर थोड़े पैसों में अपना गुजारा करूंगा और तपस्या करते रहूंगा। गुरु कहता है पर धन तो अब मेरा हुआ, तुम कैसे लोगे? वो कहते ठीक है चलो मैं नहीं लूंगा, अपना क्या करना है मैं देख लूंगा, छोटी मोटी नौकरी ले लूंगा और तपस्या कर तो करूंगा। गुरु कहता है ठीक है, मेरे पास एक नौकरी है, करोगे? वो कहते हैं हाँ चलो, यहां वहां जाने से अच्छा आपकी नौकरी कर लूंगा, तनख्वाह मिल जाएगी महीने में और सारा समय तपस्या में बिताऊंगा। गुरु कहता है मेरे पास एक नौकरी खाली है एक राजा की, करोगे? राजा के पद पर मैं तुमको रखता हूं, वो नौकरी तुम करो, बाकी तनख्वाह तुमको महीने के अंत में मिलेगी, तुम्हारा वेतन तुमको मिल जाएगा, तुम खाली नौकरी करो और अपनी तपस्या जारी रखना। तो कहते हैं चलो ये भी ठीक है। एक महीने के बाद गुरु उससे पूछते हैं आप कैसा चल रहा है? वो कहते हैं अब एकदम ठीक चल रहा है सब कुछ, अब कोई समस्या नहीं है। जिस अध्यात्म के लिए मैं ये छोड़ने की कोशिश कर रहा था, अब वो अध्यात्म और ये कारोबार दोनों साथ साथ चल रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये मेरा नहीं है, नौकरी कर रहा हूं, अगर सेवक हूं, अगर नुकसान भी हो गया तो मालिक को चिंता, मुझे क्या? फायदा भी हो गया तो मालिक को चिंता, मालिक को खुशी, मुझे क्या? मैं तो केवल नौकरी कर रहा हूं। न्यासी, न्यासी अर्थात, न्यासी अर्थात ट्रस्टी, प्रन्यासी। संन्यास शब्द कहां से निकला है? वहीं से निकला है, प्रन्यासी, न्यासी अर्थात ट्रस्टी, मेरा कुछ भी नहीं। बाबा कह रहे हैं तुम भी संसार में ऐसे ही रहो जैसे तुम्हारा यहां पर कुछ भी नहीं है, दृष्टिकोण बदल गया, राज्य वही है, रानी बच्चा वही है, कारोबार वही है, समस्याएं वही है, रोज राज दरबार लग रहा है, मंत्री उपमंत्री राज्य की कार्रवाई सब कुछ चालू है। पहले दुखी था, क्लांत था, अभी सुखी है, क्योंकि अभी ये भाव नहीं है कि ये मैं कर रहा हूं, अभी नौकरी कर रहा है, राजा तो उधर बैठा है। तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए देह संबंध पदार्थ का कोई भी लगाव नीचे न लाए। तीन चीजों का त्याग करो, लगाव, तनाव और कमजोर स्वभाव। तो ये जो लगाव है, झुकाव है, ये नीचे लाता है, कमजोर बना देता है। एक शक्तिशाली राजा जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, हो सकता है उसका एक छोटा सा लगाव है किसी व्यक्ति में और उसके दुश्मन को पता चल जाता है तो बस उसकी कमी पता चलते ही वहीं पर आक्रमण होता है। तो किसी में भी लगाव नहीं, ये शरीर में भी नहीं, संबंध में भी नहीं, किसी पदार्थ में भी नहीं। वायदा क्या है तुम्हारा? वायदे तो बहुत है, इतने वायदे हैं क्या बताएं, जब से आए तब से वायदे ही किए जा रहे हैं। सबसे आसान काम तो वही है वायदा करना, आज से बाबा माया को परास्त कर दूंगा, तहलका मचा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। माया को कल सुना ना, चैलेंज करते हो तुम, अगर यहां आने की कोशिश की तो कोहराम मचा दूंगे, मचा देंगे, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो माया को ललकारा है, वायदे बहुत किए हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रोमिसेस मेड इन स्टॉर्म आर ब्रोकन इन काम। तूफान के समय जो वायदे किए जाते हैं वो शांति के समय तोड़ दिए जाते हैं। तूफान अर्थात आवेश में, जोश में, उत्तेजना में वायदे किए जाते हैं, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। मुरली सुनते समय क्या करूं और क्या नहीं, तुम गुप्त सेवाधारी हो, तुम भारत की गुप्त सेवा करते हो, तुम अलौकिक सेवा करते हो, तुम सर्वेंट हो, वो जो सेवा करते वो सेवा है ही नहीं, तुम जो सेवा करते वो सेवक सेवा है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। पर किंतु परंतु के विघ्न आ जाते फिर निकलते बाहर। तो वायदा है तन मन धन सब तेरा, तो लगाव कैसे हो सकता है? फरिश्ता अर्थात फरिश्ता बनने के लिए ये प्रैक्टिकल अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास करो? कि ये सब किस लिए? सेवार्थ है। ये सब क्या है? अमानत है। अमानत अर्थात कोई कहीं विदेश जा रहा है, बाहर जा रहा है, पुराने जमाने में तो अपनी चीज को पड़ोसी के पास रख के जाते थे कि मैं आने के बाद तुमसे ले लूंगा, ये मेरी वस्तु नहीं है, ये अमानत है, ये सब सेवार्थ है। और तीसरी बात कही, मैं ट्रस्टी हूं। तो आज का सारे दिन भर का ये पुरुषार्थ है, तीन बातें, लगाव नहीं, दूसरा वायदा, और तीसरा मैं ट्रस्टी हूं। ये मुझे वस्तु किस लिए दी गई है? संभालने के लिए। ये जो पद दिया गया है किस लिए दिया गया? संभालने के लिए। ये जो चीजें दी गई है, रखी है डिपार्टमेंट में, घरों में, किस लिए है? संभालने के लिए। इसका असली हकदार मैं नहीं, वो है, उसने दी है। हम लेकर हृदय अधीर, प्राण में पीर, नयन में नीर चले, हम दीवाने युग युग की बंदी, प्राचीरों को चीर चले, हम लिए अचल अनुराग, हृदय में दाग, आह में आग चले, हम लिए अनोखा एक निराला, एक बेसुरा राग चले, हम लिए एक अभियान, एक अरमान, एक तूफान चले, हम परवाने ले दुनिया से जल मरने का सामान चले। कहां चले? परवाने दुनिया से जल मरने का सामान चले, हम लेकर एक उसास, एक निश्वास, एक उच्छ्वास, जो जन्म जन्म तक बुझ न सके, हम लेकर ऐसी प्यास चले, हम एक अपरिचित प्राणों से क्षण भर कर प्यार दुलार चले, हम मस्ताने इस जगती में हर मस्ती का व्यापार चले, हम कुचल हसरते अपनी सबले हार जीत का दाव चले, हम कभी रुलाते कभी हंसाते लेकर एक अभाव चले, हम चले झूमते झूमते से झुंझा का कुछ आभास लिए, हम चले किसी पर कभी कहीं मर मिटने का विश्वास लिए, हम जला होली का जीवन की खुद खेल मृत्यु से फाक चले, हम पाप पुण्य से परे लिए अपना अनुराग विराग चले, हम किधर चले क्या बतला दे, हम चल दिए जिधर को राह मिली, हम जहां जहां होकर निकले कुछ वाह मिली कुछ आह मिली, हम चले चल पड़े क्योंकि हमें चलने वालों का संग मिला, हम ऐसे ही अलमस्तों का कुछ रंग मिला कुछ ढंग मिला, हम जस जग से नाता तोड़ एक से अपना नाता जोड़ चले, हम भला बुरा इस जीवन का सब आज यहीं पर छोड़ चले। यहां का कुछ भी नहीं चाहिए, यहां का सब यहीं छोड़ जा रहे हैं क्योंकि हमें ऐसे अलमस्तों का संग मिला है। ये युग युग की प्राचीरें जो किले थे, बंदी थे जिसमें, अब उन सबको छोड़ चले। कुछ आह मिली कुछ वाह मिली, पर हम आगे बढ़ चले, हम मरने का सामान लिए चले। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात जीते जी मर जाना, इस देह से मर जाना, पदार्थों से मर जाना, और संबंधों से मर जाना। मरो हे जोगी मरो, ये मरण है मीठा। मरो हे जोगी मरो, ये मरण है बहुत मीठा मीठा मरण है, बहुत अच्छा लगता है इस मरण में। डायबिटिक डेथ, तो संसार से मर जाना, इस देह से मर जाना, क्या करे उसके लिए? देह से लगाव ही ना रहे, क्या किया जाए? आत्मा चिपकी हुई है, तो ट्रस्टी अर्थात सबसे पहला बोझ मुक्त, ट्रस्टी अर्थात जिसको कोई बोझ नहीं, मेरा नहीं है बोझ, वो संभालेगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, बोझ नहीं, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, इस बोझ से उपराम, बोझ ले लिया अर्थात बाप पर विश्वास नहीं, बोझ के साथ चल रहे अर्थात विश्वास नहीं है कि हमें चलाने वाला कौन। बाबा ने कहा है सारा बोझ मुझे दे दो, बाबा मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ और बोझ उठाओ। कब तक मैं उठाते रहूं, तुम भी तो कुछ करो। हर व्यक्ति बोझ में जीता है, बोझ में चलता है, दुखी रहता है, बोझ में मर जाता है, भगवान को पुकारते रहता है उठा लो इस दुनिया से, नहीं रहना है इस दुनिया में, इतना बोझ जब से आए हैं दुनिया में बोझ ही उठा रहे, कहां हो तुम। मृत्यु को पुकारता है पर मरना नहीं चाहता। अरेबियन कहानी है, एक लकड़हारा बोझ उठाकर जा रहा है, इतना दुखी जीवन से त्रस्त, कहता है प्रभु ये भी कोई जीवन है, वही वही सब कुछ, अच्छा हो कि मृत्यु आ जाए और मर जाऊं। और अनायासी वहां से मृत्यु गुजर रही थी, मृत्यु को लगता है मुझे किसी ने पुकारा, वो पहुंचती है, क्या तुमने मुझे पुकारा? वो कहता है तुम कौन? वो कहता है, वो कहती है मृत्यु, अभी अभी तो तुमने याद किया। वो कहता है इसलिए याद कर, ये थोड़ा सामान नीचे रख दोगे, बाकी तो सब ठीक है, बस इसलिए पुकारा था, ये सामान थोड़ा सा भारी हो रहा है, मैंने देखा कोई था नहीं इसलिए बस नीचे रख दो बस। व्यक्ति सड़ रहा है, गल रहा है, बीमारियों में त्रस्त है, दुखी है संसार में, पर आने को तैयार है क्या? स्वर्ग में एक ही सीट खाली है, कितना भी कहो नारद जी को उदासी होना है, क्योंकि कोई आना नहीं चाहता है, आऊंगा पर ये पूरा हो जाने दो, बाकी दुख बहुत है यहां पे, ये बहु बहुत दुख देती है। नारद जी कहते चलो, वो कहते है तो मेरी बहू आखिर, जाना कौन चाहता है, मरना नहीं चाहता कोई भी, दुखी है मरीज, पूछो मरना है क्या? कहता नहीं, कोई देखो कोई दूसरा कोई डॉक्टर विक्टर अच्छा होगा तो, कोई अच्छा सा कोई इंजेक्शन लग जाए, हो सकता है आ गया हो, मरना तो कोई भी नहीं चाहता। आशावादी, बहुत ज्यादा आशा, कभी कभी आशा ही मृत्यु का कारण बन जाती है। जैन धर्म में कहते हैं जीवेशना, जीवेशना अर्थात जीने की इच्छा, तीव्र प्रगाढ़ इच्छा, प्रचंड इच्छा है, व्यक्ति जीना चाहता है, दुखी है सब कुछ है पर मरना नहीं चाहता, जीवेशना उसको पकड़े रहती है, बांधे रहती है मोह में। तो ट्रस्टी अर्थात सात बातें, वो सबसे पहली बात है ट्रस्टी की, कोई बोझ नहीं, आत्मा बोझिल नहीं है, आत्मा हल्की है, निर्बोझ निर्भार अवस्था चेतना की, क्योंकि सब कुछ उसका है, यही वायदा था ना तुम्हारा, बाबा याद करा रहे, तुम ही कहते थे सब कुछ तुम्हारा है, तन धन मन सब कुछ। दूसरा ट्रस्टी अर्थात मैं निमित्त हूं, मैं क्या हूं? निमित्त, करण करावन हार ऊपर है, हम कठपुतलिया है, खेल चालू है नीचे, और डोर किसके हाथ में है? पपेटियर, वो ऊपर है कठपुतली चलाने वाला, वो जो कठपुतली चलाने वाला है ना, अलग अलग आवाजें निकालता है। बंदर भी वही बनता है, मगरमच्छ भी वही बनता है, पानी की आवाजें भी निकालता है। पक्षी भाषा, पेट बोली जिसको कहते हैं, बिना होठ हिलाए बोलना। उधर से बंदर आता है, उधर से मगरमच्छ। मगरमच्छ बंदर कहता है मुझे उस पार जाना है, मगरमच्छ कहता है बैठो मेरे पर, और ले जाता है। ऊपर से आवाज कौन निकाल रहा है? कठपुतली वाला। और दर्शक देख रहे, अरे वाह, बच्चे खुश हो रहे, तालाब के बीच में आ गए। मगरमच्छ कहता है मुझे भूख लगी। बंदर कहता है यहां भोजन कहां से मिलेगा? मगरमच्छ कहता है तुम जो हो, पर मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। मित्र गया, तुम अभी मेरे भोजन हो। और मैंने सुना है बंदरों का दिल बहुत स्वादिष्ट होता है। दर्शक क्रोधित हो रहे, धोखा धोखा धोखा, ये क्या हो रहा है? ऊपर से कठपुतली वाला खेल रहा है सब कुछ, पानी की आवाजें, झाड़ों का हिलना। बंदर कहता है हां तुमने सही सुना है, दिल मेरा बहुत स्वादिष्ट है, पर एक गलती मुझसे हो गई, मैंने अपने दिल को झाड़ की डाली पर टंगा रखा है, मैं वो ले लेता हूं, फिर तुम खा लेना। मगरमच्छ कहता है हां बात तो सही है, चलो। और बंदर कूदता है ऊपर और ठेंगा दिखा के भाग जाता है। धूर्त दोस्त, तो ये सब कौन कर रहा है ऊपर से? ना तो बंदर की आवाज है, ना तो मगरमच्छ की आवाज है, ना पानी की आवाज है, सब कुछ ऊपर से हो रहा है। कठपुतली वाला खेल पूरा हुआ, सब खुश हो गए। कठपुतली वाला अपना सामान बंदर मगरमच्छ लेके अपने घर। खेल अच्छा था, कलाबाजी अच्छी थी। हम सब कौन है? कठपुतलियां हैं इस रंगमंच पर। ऐसे ही समझना है, कठपुतलियां है। वो जो है उनको भी चलाने वाला वही है। वो जो क्रोध कर रहा है आवाज ऊपर से है शायद, वही करा रहा है सब कुछ ऊपर बैठे बैठे। क्या खेल रचा है, मजेदार, लज्जतदार, स्वादिष्ट। कितने सारे कलाकार, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एक का किरदार ना मिले दूसरे से, और ऊपर से कितना अच्छा लगता है। इसलिए वो कहता है आओ तुम भी मेरे पास बैठो और देखो साक्षी होकर कैसा खेल चालू है, कितना मजेदार खेल चालू है। ऐसा प्रीतिकर, ऐसा रुचिकर खेल तुमने कभी देखा नहीं होगा, पर केवल एक ही शर्त है, तुम मेरे पास आकर ऊपर से देखो तो तुम्हें मजा आएगा इस खेल में, तुम्हें दुख नहीं होगा, सेक नहीं लगेगी, ऊपर रहोगे। मैं निमित्त हूं। तीसरा ट्रस्टी अर्थात त्रिष्ठा, समर्पण, संपूर्ण समर्पण, समग्र समर्पण, इंटीग्रेटेड सरेंडर। आधा अधूरा नहीं, टुकड़े टुकड़े वाला नहीं, किश्तों वाला नहीं, इंस्टॉलमेंट वाला नहीं, धक से समर्पण। ट्रस्टी अर्थात समर्पण, हमने समर्पण कर दिया है। अब जो तेरी इच्छा, अब जैसा तू चलाए, अब जो तुझे अच्छा लगे, अब हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत कामना, व्यक्तिगत ध्येय, लक्ष्य कुछ नहीं, जैसा तू चलाए, जैसा तू कराए। डोर इस जीवन की अब तेरे हाथों में, इस ढोलकी को जैसा तुझे बजाना है अब तू बजा। चौथा ट्रस्टी अर्थात कोई भी लगाव नहीं, किसी से भी लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। लगाव बहुत दुख देती है। बेचैनी की अवस्था है, बेकरारी, अस्थिरता है, मन स्थिर नहीं है लगाव में। निरंतर जिसमें लगाव है उसकी याद है और खींचती रहती है उसकी याद, उसकी खबर लेने की कोशिश करती है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है जानने की कोशिश करती है, वो इस समय क्या कर रहा होगा वो भी तो पता चाहिए ना, लगाव इतना है। तो लगाव वो अवस्था है जिसमें चेतना एक ही व्यक्ति पर आकर्षित, एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाती है, वही संसार हो जाता है, उसी में सारी खूबियां, सारी विशेषता, सारे गुण दिखाई देते हैं, संसार निरर्थक दिखाई देता है, वही सब कुछ। और अंदर से बहुत मीठा सुख महसूस होता है, छूटना नहीं चाहता है उससे। मैं चाहता हूं, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये कामना है तुम्हारे लिए। लगाओ, लगाओ किसी में भी हो सकता है, व्यक्ति व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, समय में, पुरानी यादों में लगाओ। अभी है नहीं वो चीजें, पर व्यक्ति आंखें बंद करके सोचता है वो दिन कितने प्यारे थे अपने जीवन के, कितना सम्मान था मेरा, कहा गया, अब कोई पूछता ही नहीं। वो दोस्त, वो लोग कहां, पता नहीं कहां बिछड़ गए, वो बचपन की यादें, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन की यादें, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो लगाव नहीं, लगाव से मुक्त होने की विधि, जिससे लगाव है उससे नुकसान की सूची बनाओ एक। कर सकते हैं नहीं, अपने आप उत्पन्न हो जाए। हाँ वो भी है, अब से अब तक तो इसलिए तो छूट नहीं रहे लगाव से, क्योंकि फायदे ही फायदे दिखाई दे रहे। जब भी समस्या आती है वो सुनने को तैयार है, जब भी हमें कुछ कहना होता है वो सुनने को तैयार है, जब भी हमें कोई इच्छा होती है, मुझे आज ये खाने की इच्छा हो रही है तो तुरंत बना के देता है, मुझे ये चीज की कमी है, ठंड लगती है, ये स्वेटर एक चाहिए, दूसरे दिन स्वेटर आ जाता है। हाँ तो हाथ ताबड़तोब, अब कैसे छूटे। जब भी कोई कुछ कहता है, आरोप लगाते, वो कहता है मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, तुम ये कभी नहीं कर सकते, बस तुम ही हो। इधर से एक मैसेज गया नहीं कि उधर से रिप्लाई आता है, एक फोन लगाओ पूरी बेल भी नहीं जाती तो पिकअप होता है उधर से, कैसे छोड़े उसको। और वो कहता है तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं ना तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मेरे रहते तुम वही रहोगे, तुमको उस डिपार्टमेंट से कोई हिला भी नहीं सकेगा, मैं बैठा हूं। तो कैसे छूटे, कुछ नुकसान ही नहीं दिखाई दे रहा है। फायदे के पर्दे के पीछे नुकसान छिपा हुआ है, फायदे के पर्दे के पीछे नुकसान छिपा हुआ है। स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर दो, ये जो फायदे दिख रहे हैं उसके पीछे नुकसान छिपा हुआ है। वो उस दिन सुनाया था ना, दो लोग जा रहे हैं दोस्त, खटाटो अंधकार, रात का सन्नाटा, एक के हाथ में लालटेन है, एक के हाथ में कुछ नहीं है, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, प्रकाश तो है, रास्ता दिखाई दे रहा है, पर एक समय आने के बाद जिसके हाथ में लालटेन है वो कहता है अब मुझे इधर जाना है, वो कहता है उधर, मुझे तो इधर जाना है, मैं कैसे जाऊं अब मैं क्या करूं, तुम जाओ उधर, ये तो वो लेके जाएगा। अब पता चला पर जाना तो फिर भी उसको अकेला पड़ेगा बाद में, वो कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा, अभी तो मैं जा रहा हूं। तो यहां तो हर जो भी साथी है, अच्छा वो कितना भी अच्छा है और एक दिन मर गया तो मन के पास इतनी युक्तियां है अपने आप को समझाने के लिए, ऐसा थोड़ी ना कोई मरता है देखेंगे जब वो मरेगा तब वैसे तो सभी मरने वाले हैं, अभी तो है ना, जब तक है तब तक चलने दो मन को इतना आसान नहीं है, सब कलाएं आती है उसको, बहुत शातिर दिमाग है तो अटैचमेंट नहीं, हर अटैचमेंट में एक बेचैनी है, एक दुख है। अटैचमेंट पैरासिटिक है, पैरासिटिक के साथ किसी पर निर्भर है, परावलंबी है, वो है तो सब ठीक, वो नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। अच्छा किसी कारण से हमें उसकी आवश्यकता है और उस तक हम नहीं पहुंच पाए तो हो सकता है कुछ हो जाए, मोबाइल ही बंद कर दे या ऑफ हो जाए या कुछ, जो दुख होगा फिर। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, इन आवर ग्रेटेस्ट आवर्स ऑफ नीड वी स्टैंड अलोन। जब हमको किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उसी समय वो नहीं रहेगा, जब हमें सबसे ज्यादा किसी की आवश्यकता होती है वी स्टैंड अलोन, कोई भी आसपास नहीं है, हम अकेले ही है तब, तो अटैचमेंट फ्री। उसके बाद में पांचवा ट्रस्टी, अर्थात ये नहीं कि अटैचमेंट नहीं है, ट्रस्टी अर्थात ये नहीं कि हमने तो समर्पण कर दिया, हम तो निमित्त है, हम अब कुछ नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे। ट्रस्टी अर्थात संपूर्ण जिम्मेवार, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल है व्यक्ति, जिम्मेदारी को छोड़ा नहीं है, सब कुछ कर रहा है, सारी सेवाएं कर रहे हैं, जो कुछ कार्य दिया गया है, जो कर्तव्य है, कर्तव्य से विमुख नहीं है व्यक्ति। कर्तव्य से विमुख हो जाना यह ट्रस्टीशिप नहीं है, ट्रस्टी तो इस संसार का सबसे अधिक कार्य करने वाला व्यक्ति है, कर्मठ है। तो जिम्मेवार, जिम्मेदारी से हर कार्य करना। छठवां ट्रस्टी अर्थात कोई भी मालकियत का भाव नहीं है, ओनरशिप नहीं है, मालिकपन नहीं है। जैसे पति होता है ना, कहता है मैं मालिक हूं इस घर का, मेरी आज्ञा से सब कुछ होना चाहिए, ब्रेड विनर अंग्रेजी में कहते हैं कि कमाने वाला मैं हूं, इसलिए तुम लोगों को मेरी सुनना चाहिए। मालकियत, जहां जहां मालकियत का भाव है वहां वहां तनाव है, मैं इस चीज का मालिक हूं, यह चीज मेरी है, कोई लेना नहीं चाहिए, अगर किसी ने लिया तो फिर देख लेना, ये मेरा बगीचा है, तुम्हारी भैंस अगर इसमें आ गई तो देख लेना, फिर दोस्ती अपनी जगह पर है, ये बगीचा अपनी जगह पर है फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना तुम, भैंस तुम्हारी उधर ही रहेगी, मालकियत ये मेरा है। और अंतिम ट्रस्टी अर्थात विनम्रता, ट्रस्टी अर्थात नम्रता, ट्रस्टी अर्थात वो अहंकार, वो घमंड नहीं। ये सात बातें हैं ट्रस्टी की, बोझ नहीं, निमित्त हूं, समर्पण कर दिया है, कोई लगाव नहीं, पर ये सब करते हुए भी संपूर्ण जिम्मेदारी के भाव से वो कर्तव्य किया जा रहा है, ये दायित्व मुझे दिया गया है, ये भाव है और इसका कार्यवहन मुझे करना है। ट्रस्टी अर्थात मैं मालकियत के भाव से मुक्त हूं। ट्रस्टी का सबसे गहरा संबंध इस छठवीं पॉइंट से है, मालकियत नहीं, यही ट्रस्टी होता है। ट्रस्टी अर्थात मालिकपन का त्याग कर दिया है, मैं मालिक नहीं हूं, मालिक वो ऊपर बैठा है। जैसे एक व्यक्ति बहुत गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है, भूखों मर रहा है, एक साहूकार को दया आ जाती है। जब उसके सामने भीख मांगने आता है, वो साहूकार कहता है कि मेरा एक कारोबार है, तुम ऐसा करो कि मैं तो दूर रहता हूं शहर में, ये गांव में कारोबार है, तुम उसकी देखभाल करो, ठीक है, और मैं आऊंगा तब तुम मुझे सारा हिसाब देना। तो कहता है ठीक है दूंगा। तो कहता है मुझे कितना, मतलब वो पूछता है मुझे कितना, मतलब मुझे 2% और तुम 98%, ऐसा भी हो जाए तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा मिल जाना चाहिए, वो जो भी उसमें फायदा होगा उसका। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम आधा ले लेना, मैं आधा लूंगा। तो वो तो बहुत ही खुश हो जाता है, इतना काम करता है, इतना काम करता है, इतना काम करता है, एक मास, फिर एक मास के बाद वो आता है 50-50 बांट देते, एक मास, अगले मास फिर आता है, फिर भी बहुत और ज्यादा काम करता है, और ज्यादा फायदा होता है। मालिक आता है, फिर ये कहता है काम तो सारा मैंने किया, तुम तो बस आखिरी में आ जाते हो पैसे लेने, 98% मेरा हुआ, 2% तुम्हारा, तुम तो करते कुछ नहीं, काम तो मैं करता हूं ना यहां पर। और अगली बार आता है तो कहता है ये तो मैं तुमको क्यों दूं, मैं नहीं दूंगा कुछ भी, ये सब मेरा है, क्योंकि काम मैं करता हूं, तुम कुछ नहीं करते हो। भगवान का भी ऐसा ही, हमको दिया कुछ और हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, कंगाल। बात कहां पर तय हुई थी, और अभी हमने किया, हमने सेवाएं की, सेवाओं में सफलता मिली। वो कहता है मैंने की, मतलब तुम कहां थे, ऊपर बैठे देखते रहते हो, सारा कुछ तो हम कर रहे थे इधर, और आ जाते हो लास्ट में। तो ट्रस्टी, कूट कूट के भाव भरना है अपने अंदर, मैं ट्रस्टी हूं, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं निमित्त हूं, करावन करावन करण करावन, और वो है हम कठपुतलिया है। जो आवाज यहां से निकल रही है ऊपर से आ रही है, दिख रहा है डोरी, हाथ जो ऐसे हिला, ऐसे थोड़ी ना हिला, ऊपर से रस्सिया है, अदृश्य रस्सिया, सारों को वही हिला रहा है। और ये कहना कि अदृश्य ठीक नहीं, मतलब उसके डायरेक्शन पर तुम डाउट कर रहे हो, मतलब ये कह रहे हो कि उसने जो ड्रामा बनाया वो गलत है। वैसे तो वो कहता मैंने नहीं बनाया, पर उस दिन बोल दिया था गलती से उस दिन था ना, मैंने ये ड्रामा दुख के लिए नहीं बनाया, पकड़ा गया बाबा आज तक कभी नहीं कहा ऐसा, पर उस दिन तो पकड़ लिया रंगे हाथों, तुमने ही बनाया है। अब ये भी बता देना कब, किसी को हम बताएंगे नहीं, कान में बता दो बस कब बनाया। हमेशा तो यही कहता है मैं भी ड्रामा में बंधा हूं, मेरा भी पार्ट है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये ड्रामा ऐसा है, ड्रामा में सब ये हो रहा है। नहीं पर उस दिन पकड़ में आ गया ना, उस दिन बोला मैंने ये ड्रामा दुख के लिए नहीं बनाया, बोल दिया ऐसे, बोलते बोलते निकल गया और फिर एकदम ओ नो फिर उनको लगा होगा इतनी बड़ी मुरली है किसको क्या याद रहता है, इतनी सारी पॉइंट डाल दूंगा कि सब ऊपर नीचे कर दूंगा सबको, और दूसरे दिन अव्यक्त मुरली चला दूंगा और गोल गोल घुमा दूंगा सबको। पर पकड़ने वालों ने पकड़ ही लिया आखिर। तो ये आज का पुरुषार्थ तो सबसे पहला लगाव नहीं, लगाव के पर्दे के पीछे नुकसान छिपा हुआ है, लगाव में बहुत बेचैनी है, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, अस्थिरता है, एक स्थिति गिरा देता है लगाव, इसलिए लगाव नहीं। व्यक्तियों से लगाओ, तन से लगाओ और वस्तु से लगाओ पहला। दूसरा अपना वायदा याद करो। तो होमवर्क दे रहे आज की मुरली में, साकार मुरली में कौन कौन से वायदे हमने किए उसकी लिस्ट निकालनी है। डायरेक्ट नहीं लिखा है कि ये वायदा है, परंतु मुरली को पढ़ना ही ऐसा है कि इसमें हमने जो किए हुए प्रण है भक्ति मार्ग में जो वायदे थे वो आज की मुरली में कौन कौन से है, या फिर नहीं किए तो करने हैं, वो भी दोनों, जो किए थे और जो करने हैं प्रण। प्रण प्रतिज्ञाओं की लिस्ट निकालनी है आज की साका मुरली से, सबके लिए ये काम है। नहीं हाँ वो भी कह सकते, पर प्रतिज्ञा के रूप में आज की मुरली से प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा है की है, ठीक है। ये दूसरा काम। तीसरा काम निखिलेश भाई, मैं कौन हूं? ट्रस्टी हूं। तो ट्रस्टी का एक चित्र बनाना है आपको जिसमें ये सात बातें आनी चाहिए, ठीक है। एक व्यक्ति बनाओ जिसमें ये सात बातें आनी चाहिए, बिसारो वाली, BISARO H। बोझ नहीं, इंस्ट्रूमेंट, सरेंडर, अटैचमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबल, ओनरशिप नहीं, और ह्यूमिलिटी, नम्रता। ये बिसारो, ट्रस्टी अर्थात बिसारो, ठीक है। ओम शांति।